Thank you. जगत दाता grace of our Sahara Aravinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Ki Granthalar Shri Bhagavatam Ki Shri Shri Radha Gokulananda Ki Shri Shri Gaurataya Ki Shri Shri Jagannath Bhakti Subhadramaya Ki Shri Viraj Govardhan Maharaj Ki Shri Vrindavan Dham Ki Gopayanande Samaveda Bhaktavrinda Ki Samaveda Bhaktavrinda Ki Samaveda Bhaktavrinda Ki Shri Shri Guru Gauranga Ki Om Jnana Timirandasya Jnana Chamashavaraya Shri Chaitanya Manodrishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Dharmayam Dadati Svapadantikam Namaneham Shri Guru Shri Padavaram Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sthapitam Sahadaravunathapitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahara Lalita Shri Vishakhandvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Dinami Namaste Sadhakadurge Gauravani Prajayane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarane Mukam Karoti Vachalam Pankumnam Karate Dinam Yatrivatamaham Mande Shri Guru Dhinatarinam Vanchakalpakaru Vyascha Kripasindru Vyayevacha Adhutanam Pavane Vyo Vaishnave Vyo Namo Namaha Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Kalayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gora Krishe Namaha He Krishna Arunasindro Dhinavandro Jalaspate Gopesha Rupaka Kantara Kantara Mastute Sapta Kanchana Kaurangi Rahe Vrindavaneshwari Sushamhan Mastute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Aam Srimad Bhagavat ke Dasham Skandh ke 24ve adhyay mein is prasang par charcha kar rahe the कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ब्रजवासी गण इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं तो उन्होंने ब्रजवासियों को रोकना चाहा नाना प्रकार के झूठे तर्क उन्होंने सामने रखे अंततः श्री कृष्ण ने अपना सच्चा जो उद्देश्य था वो स्पष्ट किया और उनका उद्देश्य ये था कि इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय हमें यहाँ के ब्राह्मणों की गायों की और गिरिराज गोवर्धन की उपासना या उनकी सेवा करनी चाहिए तो जो भी सामग्री आपने एकत्र की है इंद्रदेव के यज्ञ के लिए उसे आप गोवर्धन गाय और ब्राह्मणों की पूजा के लिए इस्तेमाल करो फिर आगे चल के भगवान बताने जा रहे हैं कि आपको ये यज्ञ या ये अनुष्ठान कैसे मनाना चाहिए अभी उपदेश देंगे आदेश देंगे ब्रजवासियों को देखिए जब ब्रजवासियों ने बात मानी श्री कृष्ण की तो केवल इसलिए नहीं मानी कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर ढंग से बात करते थे कि उनको बात पट गए कि चलो ठीक है ये जो बोल रहे हैं सही है ऐसा नहीं है उनके मन में श्री कृष्ण के लिए एक ऐसा स्थान था कि वो श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। तो अगर श्री कृष्ण चाहते हैं कि गोवर्धन की पूजा हो तो वही सही। तो ये है सच्चा प्रेम। तो गोवर्धन से वो इतना प्रेम करते थे, वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि जब श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करो तो तुरंत उन्होंने बात को मान ली, सामने कोई तर्क वगैरह उन्होंने नहीं रखे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, पचयंता विविधा पाका सुपंता पायतादय पाचयांतम विविधा पाका, तरह तरह के व्यंजन आप पकाइए गोवर्धन के लिए, गौओं के लिए। सुपानता पायतादय आदय, तरह तरह के गीले सब्जियां, तरह तरह के पायस, खीर, तरह तरह के ऐसे मिष्टान्न वो बनाइए। संयवा पूप शशकुल्य सर्वदोहश्च गृह्यताम, फिर तरह तरह के आप तले हुए चीजें, तरह तरह के उबले हुए चीजें, जो भी तरह तरह के व्यंजन आप बनाइए। सर्वदोहश्च गृह्यताम, और गाय से जो दूध आता है दूध से भी तरह तरह के आप पदार्थ बनाइए और ये अर्पण कीजिए। पूजन्ताम् अन्यः सम्यक् ब्राह्मणय ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहु गुणं तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणाः। तो सबसे पहले तो ऐसे योग्य ब्राह्मणों को बुलाइए और उनसे ऐसे वेदों के मंत्रों का उच्चारण कराइए। ब्रह्मवादिभिः, जो वास्तव में वेदों में विद्वान है, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाकर उनके द्वारा होयंताम अग्नय सम्यक, तो यह होम आदि करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, साथ साथ अन्नम बहुगुणम तेभ्यो देयम वो धेनु दक्षिणा, और फिर ब्राह्मणों को आप दक्षिणा दीजिए। किस प्रकार की दक्षिणा? अन्नम बहुगुणम, और तरह तरह के उनको अन्न दीजिए, उपहार दीजिए, और धेनु और गाय भी दान में दीजिए। ऐसे ब्राह्मणों का सत्कार आप कीजिए जो कि वास्तव में विद्वान है, और उनके द्वारा आप यज्ञ संपन्न यहां कीजिए। और इस प्रकार से अन्येभ्याश्चाश्व चांडाल पतितेभ्यो यथा अर्थः, इसके बाद सबको आप भोजन खिलाइए, जिसकी जैसे जैसे परिस्थिति वैसे उनको भोजन खिलाइए, यहां तक कि च अश्व चांडाल, कुत्तों को भी खिलाइए और कुत्ते खाने वालों को भी खिलाइए, चांडाल सबको अपने अपने जगह में। और उसके बाद यवसम च गावाम तत्वा, गवों को घास खिलाइए, गिरे दीयताम बलि, और फिर जितने भी आपके सामग्री हैं वो गोवर्धन को अर्पण कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि जब ये प्रसाद का वितरण होगा तो कोई छूट न जाए। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों को प्रसाद देना है, सबको देना है। इसलिए उन्होंने कहा चांडालों की बात तो दूर है, कुत्तों को भी खिलाओ, कुत्तों को भी खिलाओ, पशुओं को भी खिला दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार से ये उत्सव मनाना चाहिए। तो पहली बात, तरह तरह के व्यंजन पकाने चाहिए। दूसरी बात, ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उनके द्वारा यज्ञ संपन्न किए जाने चाहिए, फिर उनको दक्षिणा देना चाहिए, बाद में प्रसाद का वितरण होना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, स्व अलंकृता भुक्तवंत सु अनिलिप्ता सुवास प्रदक्षिणां च कुरुत गो विप्राण पर्वतान सु अलंकृता। अलंकृत हो जाइए, तरह तरह के आभूषण पहन लीजिए। गोपों को कह रहे हैं कि हे गोपगण, और हे गोपियां, आप सब प्रसाद वितरण के बाद अच्छे अच्छे अलंकार से अपने आप को सुसज्जित करिए। जब आपने भुक्तवंतः पेट भर खा लिया है, उसके बाद अपने आप को सजाइए। सुअनिलिप्ताः, फिर तरह तरह के लेप लगाइए। अनुलिप्ता मतलब लेप लगाने, जैसे चंदन का लेप आदि अपने आप पर लगाइए। सुवासतः, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, नए वस्त्र पहनिए अगर हो सके तो। हमें याद रखना है कि ये गोवर्धन पूजा कौन से दिन पर हुई थी? हाँ, कौन से दिन? एकादशी नहीं, दीपावली के दिन पर ये उत्सव हुआ था। तो उस दीपावली के अवसर पे, दीपावली के थोड़े ही पहले, तो इस दिन पर वास्तव में यहाँ लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। वे यार बचपन में दिवाली की राह देखते हैं, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। बाकी सब क्या हुआ दिवाली पे नहीं मालूम, लेकिन कपड़े मिलेंगे अच्छे और खूब पटाखे फोड़ेंगे। तो आज जो उत्सव जो होते हैं, उसमें लोग भूल चुके हैं कि ये उत्सव किस लिए मनाए जाते हैं। केवल एक मनोरंजन का कारण बन जाता है, या तो फिर अधिक से अधिक एक सामाजिक एक अनुष्ठान हो जाता है जिसमें सभी लोग आके गपशप कर सकें, साथ में आए बस। अब होली में देखिए क्या दशा है सड़कों पर, और वृंदावन में तो पूछिए मत। वृंदावन में हम लोगों को मंदिर बंद करके रखना पड़ा होली के दिन, क्योंकि इतना बुरा हाल बाहर। होली किस लिए मनाया जाता है, किस भाव से मनाया जाता है, वो कोई नहीं जानते हैं ना जानना चाहते हैं। ये क्या कारण है? केवल एक मनोरंजन के लिए, एक हल्ला गुल्ला करने के लिए, सब जगह उत्पात करने के लिए, बस एक उनको कारण मिल जाता है, और छेड़खानी करना। तो तरह तरह वृंदावन के अनेक मंदिरों में पुलिस आगे कई लोगों को गिरफ्तार करके ले गए, क्योंकि महिलाओं की छेड़खानी हो रही थी वो होली के नाम। उसी प्रकार से दिवाली, आप दिवाली कहेंगे तो लोगों के मन में क्या शब्द आएगा पता है, बस धूमधाम आवाज होता है। लेकिन दिवाली के उत्सव का उद्देश्य क्या है, किस भाव से मनाया जाना चाहिए, क्या कारण है, ये हम भूल जाते हैं। तो हाँ, दिवाली आदि उत्सव में नए वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन और भी क्या करना चाहिए। आगे प्रदक्षिणम चकुरुतर गो विप्राणल पर्वतान, फिर ये सब करके आप प्रदक्षिणा कीजिए, और गौओं और विप्रों के साथ में गौओं की प्रदक्षिणा कीजिए, और अग्नि के भी, और साथ साथ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी आप कीजिए। तो थोड़ी बहुत भक्ति भी होना चाहिए उत्सवों में। उत्सव क्यों होते हैं? भगवान के बारे में याद दिलाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए तो ही ये उत्सव होते हैं, एक अवसर होते हैं उत्सव। उत्सव मानव प्रिय है, मनुष्यों को उत्सव प्रिय होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मनोरंजन हो जाता है, कुछ मन हल्का हो जाता है, परंतु इनको भगवान के साथ जो संबंध है वो हमें देखना चाहिए, अन्यथा ये केवल एक भौतिक बस अनुष्ठान हो जाए। लोगों को कुछ न कुछ उत्सव चाहिए, इसलिए तो भगवान आए हैं। भगवान आके गोवर्धन पर्वत को धारण करने जैसी लीलाएं करते हैं, ताकि हमें उत्सव मनाने के लिए एक अवसर मिले, एक मौका मिले, और फिर ये उत्सव जो है उन्हीं उसी भाव में मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके हमें ये उत्सव मनाने चाहिए। फिर उत्सव के समय भगवान की कथा होनी चाहिए, भगवान के नामों का संकीर्तन होना चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण उत्सव का हृदय है, उत्सव की आत्मा है। अगर ये सब नहीं होगा तो उत्सव का क्या मतलब? फिर होली हो, दिवाली हो, तो सब केवल भौतिक अनुष्ठान हो जाते हैं, कोई उसमें धार्मिक तत्व रहता नहीं है। और इस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनको गोवर्धन पूजा कैसे करनी है ये आदेश दिया, और फिर कहा एतन मम मतम तात, कि हे तात, हे पिताजी, ये मेरा मत है, ये मेरा विचार है। क्रियताम यदि रोचते, अगर आपको सही लगा तो आप कीजिए। अयम गो ब्राह्मणात्रीणां मह्यं च दयितो मखः, और ऐसा जो यज्ञ है मखः, ये गवों को, ब्राह्मणों को, गोवर्धन पर्वत को और मह्यं मुझे भी बहुत प्रिय होगा। तो इसलिए अगर आप ठीक समझें तो ये गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाइए। श्री शुक उवाच, कालात्मना भगवता शक्र दर्पज घामसया प्रोक्तम निशम्य नानाद्यः साध अघ्रिणंत तद्वचः। कालात्मना भगवता, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे आदेश दिया ब्रजवासियों को, तो यहां भगवान कृष्ण को कालात्मना कहा गया है। काल आत्मना, जो कि काल के रूप में प्रकट होते हैं। काल क्या है? काल भगवान की शक्ति है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काल अस्मि कालोस्मि सर्वलोक क्षय प्रवृत्त, समस्त लोकों का विनाश करने के लिए मैंने काल का रूप धारण किया है। ये भगवान की काल शक्ति इस भौतिक जगत में इस तरह काल करती है कि तीन विभाजन करती है, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो ये काल का प्रभाव है, और जब ऐसे भूत, वर्तमान और भविष्य का विभाजन होता है तो फिर हर एक वस्तु का क्षय होने लगता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं अहम एवाक्षयः कालः, मैं ही एव निश्चित ही अक्षय काल हूं। काल अक्षय है लेकिन काल सबका अक्षय कराता है। मैं अक्षय हूं भगवान कहते हैं, और मेरी काल शक्ति भी अक्षय है, परंतु ये अक्षय काल शक्ति सबका अक्षय कराती है। तो यहां इस भौतिक सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो कीड़े के जंतु योनि में हो, चाहे वो पेड़ की योनि में, देवता की योनि में, मनुष्य योनि में, सब छह परिस्थितियों से गुजरते हैं काल शक्ति के प्रभाव से। जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, संतान आदि की उत्पत्ति होती है, घटक होता है शरीर का और फिर विनाश हो जाता है। तो इस सारी परिस्थितियों से हर एक शरीर, या यहाँ आप समझिए कि ये पेड़ है, सभी कुछ इन परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो ये भगवान की काल शक्ति है, और काल शक्ति के द्वारा भगवान हर चीज का दमन करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो काल का सामना कर सके, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वही काल है कलयतामहम, मतलब दमन करने वालों में से वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो काल के रूप में हर व्यक्ति का दमन करते हैं। इतिहास में इतने बड़े बड़े राजा हुए, इतने बड़े बड़े नेता हुए, इतने बड़े बड़े बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंततः काल के सामने कोई टिक नहीं पाया। कहाँ है वो बड़े बड़े राजा, कहाँ है वो बड़े बड़े लोग, कहाँ है वो बड़े बड़े राज्य, सब गए। तो काल के प्रभाव से कोई चीज टिकती नहीं है यहाँ पर। इसलिए भगवान यहाँ पर, भगवान को यहाँ कालात्मना कह के संबोधित किया जाता है। तो जब काल अंततः हर चीज का विनाश करने वाला है, घमंडी लोगों के घमंड का विनाश करता है काल। एक मुक्का प्रहार करने वाले बॉक्सर हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध थे कई साल पहले, हमारे बचपन में बहुत प्रसिद्ध थे, याद है, हम सुनते थे उनके बारे में, और उन्होंने सारे विश्व प्रतियोगिताएं जीत ली थी मुक्का प्रहार के प्रतियोगिताओं में। और फिर उनको इतना घमंड हो गया कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, तो उनका एक कहना था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। तो उनके ऊपर कितने सारे सिनेमा बने, किताबें लिखी गई, गाने हुए, कविताएं लिखी गई, क्योंकि इतने शक्तिशाली आदमी कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन अंत में क्या हुआ, उनकी ऐसी बीमारी हो गई जिससे वो हाथ उठा भी नहीं सकते थे, हाथ पूरे कांप रहे थे, उंगली भी उठा नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। और जब बड़े मुश्किल से चलते थे तो धीरे धीरे से पैरों को घिसा घिसा कर जमीन पर चलते थे। जब वो कह रहे थे कि मैं सबसे महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट, केवल उसके 10-20 साल बाद ही हो गए, तो कहां गई उनकी शक्ति। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका घमंड चूर नहीं होता है काल के साथ। किसी को अपने सौंदर्य का घमंड होता है, बुढ़ापा आ जाता है, सौंदर्य का घमंड खत्म हो जाता है, अंततः मृत्यु के समय हमारा सारा घमंड विनाश होता ही है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, मृत्यु जब आएगी तो मृत्यु पर टाल नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप 2 साल बाद आइए, मेरी और कोई योजनाएं हैं, नहीं, मृत्यु जब आएगी तो आएगी, जबरदस्ती सब कुछ हरण करके ले जाएगी, मृत्यु सर्वहर्ष चाहो। तो काल के रूप में आके मृत्यु हमारा सब कुछ हरण कर लेने वाली है, ये निश्चित है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने घमंड आदि को पहले से त्याग देता है। जब पहले से ही त्याग लें तो फिर कोई तनाव नहीं होता। दुख कब होता है, जब आसक्ति होती है। अगर हमारे पास कोई वस्तु है जिसके प्रति हम बहुत आसक्त होते हैं और वो चीज हमसे छीन ली जाती है तो हमको बहुत दुख होता है। दूसरे की चीज छीन ली जाती है तो उतना दुख नहीं होता है, कभी कभी सुख भी होता है, लेकिन दुख नहीं होता है, क्योंकि उस चीज के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है। तो अगर व्यक्ति सोचे, थोड़ी गहराई से सोचे कि मेरा धन है, धन का इतना घमंड है, ये सौंदर्य है, इसका घमंड है, बुद्धि है, योग्यता है, ये सब मेरे पास इतनी चीजें हैं, इनका घमंड है, लेकिन ये अंततः मुझसे छीन लिए जाएंगे, फिर क्यों घमंड रखना चाहिए। और उस समय जब ये छीन लिए जाएंगे इतना मुझे दुख होगा, इतना कष्ट होगा, ये सब क्यों करना चाहिए। तो अभी से छोड़ दो, अभी से अंदर ही इन चीजों से मुक्त हो जाओ। लेकिन इंद्र दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं सोच रहे थे, इसलिए भगवान ने कहा अब मुझे काल रूप का प्रभाव मुझे दिखाना पड़ेगा इंद्र के ऊपर। तो यहां कहा गया है कालात्मना भगवता शक्र दर्प जिघांसया, शक्र मतलब इंद्र, दर्प मतलब घमंड, जिघांसया मतलब नष्ट करना। तो भगवान ने सोचा अभी मुझे काल रूप धारण करके मेरे प्रिय भक्त इंद्र के घमंड का नाश करना होगा। प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साधु अग्रणंत तद्वच। तब ऐसे श्री कृष्ण बोले थे तो निशम्य नंदाद्या, तो नंद आदि जो गोपगण हैं उन्होंने सुना और सुनकर क्या कहा, अग्रणंत तद्वच, उनके वचन स्वीकार किए अग्रणंत और साधु साधु, बहुत अच्छा कृष्ण, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। तो कृष्ण की बातों को पूरी तरह से वो मान गए। तथा च व्यदधुः सर्वं यथाह मधुसूदनः वाचायित्वा स्वस्ति अयनं तद्द्रव्येन गिरिभयम्। तथा च व्यदधुः सर्वं, तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा था ठीक वैसे उन्होंने किया, यथा अह मधुसूदन, जैसा मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा ठीक वैसे ब्रजवासियों ने किया। वाचयित्वा स्वस्ति अयनम तद्द्रव्येन गिरिद्विजाम, फिर वाचयित्वा स्वस्ति अयनम, स्वस्ति अयनम मतलब जो मंत्रों का उच्चारण होता है मंगल का आह्वान करने के लिए वो पढ़ाया गया। फिर तद्द्रव्येन गिरिद्विजाम, तो जितने भी द्रव्य एकत्र हुए थे वो सब गिरिराज आदि की पूजा के लिए एकत्र कर लिया। उपहृत्य बलिम सम्यक आद्रता यवसम गवाम, फिर जितने भी और सामग्री भी एकत्र किए थे उन्होंने, वो सब लिए, साथ में गवों को भी उन्होंने घास वगैरह खिला दिया। गोधनानी पुरस्कृत्य गिरिम चक्रु प्रदक्षिणा, गोधनानी गोधन, तो सुखदेव गोस्वामी गायों को गोधन कहते कहते, क्योंकि ये ब्रजवासियों का धन था, पुरस्कृत उन्होंने अपने सामने रखा और क्या किया, गिरिम चक्रु प्रदक्षिणा, तो गिरि मतलब पर्वत गोवर्धन, तो उन्होंने गोवर्धन की प्रदक्षिणा शुरू कर ली। तो इस दिन से भगवान ने गोवर्धन परिक्रमा के उत्सव का या कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय ब्रजवासी भक्तों के पद चिन्हों में चलते हैं। और गोवर्धन परिक्रमा ये भी भगवान की बहुत निकट की सेवा है। जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो पल पल पर समय सब जगह जगह पर हमें राधा कृष्ण और कृष्ण और गोपों के बीच में जो तरह तरह की लीलाएं हुई थी उनके बारे में सुनने को अवसर मिलता है। इन लीला स्थलियों को हम देखते हैं और ऐसे परिक्रमा करते करते जब हम वापस लौट के आते हैं तो फिर हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति अवश्य प्रेम भी जागृत हो जाता है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना ये हमारे लिए एक भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। जब भी आप में से कोई वृंदावन आए अवश्य गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करें, ये एक विधि है। जब श्री कृष्ण ने गोलोक वृंदावन में राधा रानी से कहा कि मैं अभी पृथ्वी लोक में भौतिक ब्रह्मांड में जा रहा हूं लीला करने, तो आप भी आ जाओ, तो राधा रानी ने शर्त रखा, मैं आऊंगी लेकिन आपको यमुना जी और गोवर्धन को प्रकट कराना होगा, तब मैं जाऊंगी, क्योंकि यमुना और गोवर्धन के बिना ब्रज में कोई आनंद नहीं है। तो कृष्ण ने कहा कि पहले से वो प्रकट हो चुके हैं, ठीक है फिर मैं आऊंगी। तो गोवर्धन भगवान के हृदय से प्रकट हुए, बहुत प्रिय है भगवान के। तो आने वाले दो तीन दिनों में भी हम गोवर्धन के बारे में बहुत चर्चा करें। तो ये प्रदक्षिणा करना या परिक्रमा करना ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। वो कहते हैं कि भक्ति के नौ लक्षण हैं। जैसे भगवान विष्णु या कृष्ण के बारे में हमें सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तनम उनके बारे में बोलना चाहिए, स्मरण उनके बारे में स्मरण करना चाहिए, और फिर कहते हैं पाद सेवनम। तो नवधा भक्ति का जो चौथा अंग है उसे पाद सेवनम कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पाद सेवनम क्या चीज है। जब हम श्रवण कीर्तन स्मरण ये करते हैं तो धीरे धीरे फिर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना अच्छा लगता है। भगवान के चरण कमल मधु के समान है और भगवान के भक्त वो वृंद के समान है, भंवरों के समान होते हैं। जिस प्रकार से भंवरे जो हैं वो मधु के पास नहीं जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त वो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, वहीं पे आश्रित रहना चाहते हैं। तो धीरे धीरे जब भक्त ऐसे भगवान के चरण कमलों की सेवा करना आरंभ करता है तो उसकी सेवा और विस्तारित हो जाती है, और फिर अनेक ऐसे सेवाएं हैं जो भी पाद सेवनम कहलाती हैं। पाद सेवनम एक दृष्टि से कहा जाए तो जब हम भगवान का दर्शन करते हैं या आके, ये भी पाद सेवनम है, या जब हम भगवान के अच्छा विग्रह की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तो उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, ये भी पाद सेवनम है। जैसे लक्ष्मी देवी हैं, वो वैकुंठ में भगवान नारायण के चरण दबाती हैं, तो ये पाद सेवनम है। तो यहां श्रृंगार शुरू करने के पहले भी भगवान के चरण कमलों का स्पर्श अगर करेंगे, ये भी पाद सेवनम है। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाना, उनके विग्रह का या मंदिर की प्रदक्षिणा करना, ये सब पाद सेवनम कहलाता है। या तो फिर कोई तीर्थ स्थान में जाना, जैसे वृंदावन है, द्वारका है, मथुरा है, तो ये भी पाद सेवनम कहलाता है। हाँ, आजकल तो हम रेलगाड़ी में, एरोप्लेन में, हवाई जहाज वगैरह में जाते हैं, लेकिन पहले जमाने में क्या हुआ करता था, लोग चलते ही जाते थे ना परिक्रमा या तीर्थ यात्रा में, और वहां जाकर फिर तीर्थ स्थानों में भ्रमण करना। तो ये तीर्थ स्थानों का भ्रमण, तीर्थ यात्रा जो है, ये भी पाद सेवनम कहलाता है। साथ साथ तदीय सेवनम, मतलब भगवान श्री कृष्ण से जो भी संबंधित है उनकी सेवा करना, ये भी पाद सेवनम कहलाता है। जैसे गंगा जी में जाके, जमुना जी में जाके स्नान करना, ये पाद सेवनम है। वैष्णवों की सेवा करना, ये पाद सेवनम है। तुलसी महाराज जी की सेवा करना, ये पाद सेवनम है। ये सब पाद सेवनम कहलाता है। तो धीरे धीरे से जब हम ऐसे भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी रुचि और बढ़ने लगती है। भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा तो यहाँ हमारे लिए संभव नहीं है। अनेक मंदिरों में मंदिर के भीतर ही प्रदक्षिणा के लिए एक मार्ग रखा जाता है, परंतु यहाँ हमारे मंदिर की व्यवस्था ऐसी है कि हम प्रदक्षिणा के लिए कोई मार्ग नहीं रख पा रहे हैं। आशा करते हैं कि एक दिन ऐसी व्यवस्था हो पाएगी, जिससे कि जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे वो आके कम से कम चार बार यहाँ भगवान की परिक्रमा करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। ऐसे भगवान की परिक्रमा या प्रदक्षिणा करना, ये भी एक साधन भक्ति का अंग है। श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि साधन भक्ति के 64 प्रमुख अंग हैं, और उनमें से एक है परिक्रमा या प्रदक्षिणा करना। तो हरि भक्ति सुधोदय से श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन यत् तत्र आवर्तते पुनः तत् एवावर्तनम् तस्य पुनर्नावर्तते भवे। वो कहते हैं विष्णु प्रदक्षिणी कुर्वन, अगर हमने भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा की, या विष्णु के मंदिर की, या विष्णु के धाम की, या तीर्थ स्थान की, तो क्या होता है, और यह तत्र आवर्तते पुनः, और प्रदक्षिणा करके आवर्तते पुनः उसी स्थान में लौट के आते हैं जिस स्थान से हमने परिक्रमा शुरू की थी, तो फिर क्या होता है, तद एव आवर्तनम तस्य, ऐसे पुनः लौट के आने से क्या होता है, पुनः न आवर्तते भवे, फिर इस भव में पुनः लौट के नहीं आना होता है। तो ये लौट के आ जाइए, भगवान को प्रदक्षिणा करके आ जाइए, जब ये लौट के आएंगे तो ये लौट के आना आपको भव सागर में लौट के आने से बचाएगा। सुंदर बात है ना। यहां कोई व्यवस्था अभी नहीं है, कैसे किया जाए, और बाहर से भी करना है तो हो सकता है किसी को बहुत घूम के करना पड़ेगा। अनेक शहर हैं जिनमें रिंग रोड होते हैं, जैसे दिल्ली में, विदेशों में भी कई शहरों में रिंग रोड है। सारा शहर जो है सब एक सड़क से, मेन राजमार्ग से घिरा हुआ है। तो समझ लीजिए जितने भी कृष्ण मंदिर शहर में है सबकी प्रदक्षिणा हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति घूमता है तो परिक्रमा हो जाती है। और खास करके चातुर्मास में जो चल रहा है उसमें प्रदक्षिणा का बहुत महत्व कहा जाता है। ये चातुर्मास का चार, ये जो चार महीने हैं, ये बहुत विशेष समय है। कई चीजें हैं, कई विधियां हैं जिनका पालन हम कर सकते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण विधि ये है कि हम भगवान का स्मरण बढ़ाएं। अगर आप में से कोई चाहे तो थोड़ा ज्यादा जप कर सकते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं ग्रंथों की, लेकिन एक चीज जिसका बहुत लाभ कहा गया है शास्त्रों में और विशेष करके स्कंद पुराण में चातुर्मास के महात्म्य में, कि चातुर्मास में अगर कोई रोज भगवान के विग्रह की प्रदक्षिणा करता है तो वो सारे विश्व का भ्रमण करने से ज्यादा है और ये किसी भी तीर्थ यात्रा में जाने से अधिक लाभदायक लाभदायक है। क्यों? श्री राजीव गोस्वामी समझाते हैं कि ऐसे प्रदक्षिणा करने से शीघ्र ही भक्ति हृदय में जागृत होती है। तीर्थ यात्रा जाना ये तो कई लोग करते हैं, कई लोग सही भावना से भी तीर्थ यात्रा में नहीं जाते। गंगा जी को जब यहां प्रकट होना था, अवतीर्ण होना था पृथ्वी लोक के ऊपर स्वर्ग लोक से, तो वो हिचकिचाई रह गए। क्यों हिचकिचाई? क्योंकि उनको ये डर था कि जब मैं पृथ्वी लोक पर मेरा जल बहेगा तो फिर जो पापी लोग हैं वो आके मेरे जल में स्नान करेंगे और अपने सारे पाप मुझमें धो डालेंगे, फिर अपने पाप से मुक्त होकर वो चले जाएंगे लेकिन सारे पाप का बोझ मुझमें आएगा, फिर मेरे लिए सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो लोग जब गंगा में स्नान करने जाते हैं तो अधिकतर इस भावना को लेकर जाते हैं कि हमारे पापों से हम मुक्त हो जाए, हमारे पाप गंगा जी ले लेंगी, फिर गंगा जी का क्या होगा हम नहीं सोचते। हालांकि गंगा जी तो इतनी शक्तिशाली हैं कि वो स्वीकार कर रही हैं, बहुत कृपालु हैं गंगा देवी, इसलिए तो वो ले रही हैं सब कुछ, लेकिन हमारी भावना सही नहीं है कि हम केवल पाप से मुक्त होने के लिए जा रहे हैं, फिर बाहर आके पुनः पाप करेंगे, फिर तीर्थ यात्रा जाएंगे, फिर स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, तीर्थ यात्रा में जाने का सही उद्देश्य क्या है? कि हम जाके वहां के स्थानीय भक्तों के बीच में बैठें और भगवान की बातें सुने, कुछ नाम संकीर्तन करें। यह तीर्थ बुद्धि ही सर्वे न करिचे जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा में केवल एक कुंड में या नदी में स्नान करने के लिए जाता है और वहां के स्थानीय भक्तों से भगवान के बारे में कुछ सुनता नहीं है और वो नाम नहीं लेता भगवान का, तो वो केवल एक पशु के समान है, गो खरह, एक गाय या ऊंट के समान है। कहने का मतलब है कि तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए, न केवल अपने पापों को नष्ट करना और आके फिर से वो पाप करना और फिर तीर्थ यात्रा में जाना, ये उद्देश्य नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं केवल एक प्रदक्षिणा मात्र करने से भगवान का तीर्थ यात्रा में जाने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। एक बार ऐसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य से पूछा, अरे कहाँ गए थे? मैं जगन्नाथ मंदिर गया था। अच्छा, क्या क्या किया तुमने? हाँ, मैंने दर्शन किया और फिर मैंने प्रदक्षिणा की। कितनी बार किया? मैंने 4 बार परिक्रमा की मंदिर की। तो महाप्रभु कहने लगे, मैं जीत गया। तो अद्वैत आचार्य बोले, कैसे जीत गए? क्या बात, मैं समझा नहीं। देखो, जब तुम प्रदक्षिणा कर रहे थे ना, मैं भगवान के सामने खड़ा था और तुम जिस तरह प्रदक्षिणा कर रहे थे भगवान का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन मैं खड़ा था, मैंने दर्शन किया। जितना भी समय तुमने 4 प्रदक्षिणा करने के लिए लगाया, उस समय में मैं भगवान के सामने खड़े रह के मेरी आंखें भगवान से हटी नहीं, तो कौन जीता? तो मैं आचार्य कहा, आप जीते। तो ये ठीक है, प्रदक्षिणा भी करना चाहिए, परंतु साथ साथ जब हमें भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने का अवसर मिलता है तो हम क्यों छोड़ें? हम वृंदावन के मंदिर में देखते हैं 8 से 9 बजे सुबह प्रवचन होता है भागवत का अंग्रेजी में मंदिर में। 8:30 बजे जब मंदिर खुलता है तो दर्शनार्थी आते हैं और उनके लिए एक रास्ता छोड़ा जाता है सिंहासन मंदिर के मतलब भगवान के पास से। तो लोग आते हैं और कई ऐसे हैं जो भगवान को देखते ही नहीं है, बस यहाँ से आते, यहाँ देखते भक्त लोग बैठे क्या हो रहा है, क्या आनंद देखते चलते जाते हैं। आए इतने लंबे लाइन में खड़े होकर और लाइन में आके भगवान के सामने से होके जा रहे हैं, इधर देखते हैं भक्त लोग क्या कर रहे हैं, वहां भगवान क्यों नहीं देखते, इतना सब आने के बाद भी भूल जाते हैं। श्रीरंगम मंदिर के एक पुजारी बता रहे थे कि वहां दर्शन करने के लिए लंबी कतार होती है, तो लंबे समय तक कतार में खड़े रहने के बाद किसी व्यक्ति को भगवान रंगनाथ का दर्शन करने का अवसर मिलता है। और कई लोग होते हैं जो जानते नहीं है भक्ति के बारे में, लेकिन थोड़ी पुण्यता है इसलिए आते हैं। तो भगवान के सामने आते हैं तो ऐसे हाथ से आंख बंद कर लेते हैं, तो पुजारी बोलते आए उनको वो लकड़ी छड़ी लेकर उनको मारा है, आंखें खोलो देखो इतने देर से कतार में खड़े हो और यहाँ आके ओम करके खड़े हो, क्या फायदा इससे? अरे जो आंखों के लिए फिट है, ये जैसे पेट के लिए फिट होता है, ये तो आंखों के लिए उत्सव है। नित्योत्सवम न कतृपुर धृष्टि बंत्यो नारियो नराश्च पुता कुपिता निवेश। वृंदावन के गोपियों के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में बताया जाता है कि उनके लिए हर दिन उत्सव था, नित्य उत्सवम न कतृपुर धृष्टि, और कभी भगवान का दर्शन करके थकते नहीं थे, न तत्रिपुर। ऐसा नहीं है कि उस वक्त मैंने बहुत देख लिया और क्या दर्शन करना है श्री कृष्ण का, क्योंकि हर एक दिन हर एक क्षण उनके लिए एक उत्सव होता था। नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृश्य भी पिबंती हो, अपने आंखों से भगवान के सुंदर रूप का पान करते थे। नारियो नराह, बहुत नर और नारी दोनों मुदिता है, और बड़े मुदित होकर बड़े आनंदित होकर नित्य उत्सव मनाते थे, और साथ साथ कुपिताच निमेश कुपित भी होते थे, कुपित क्यों होते थे, क्रोधित क्यों होते थे, अरे ये ब्रह्मा जी ने कैसे आंख बनाई, पलकें बार बार बंद होती रहती है तो दर्शन नहीं हो सकता है भगवान का। इन आंखों का तो उद्देश्य है कि भगवान का दर्शन करना, लेकिन ये पलकें बना दी भगवान ने, जिससे क्या होता है भगवान का दर्शन करने में रुकावटें आ जाती है, बीच बीच में दर्शन बंद हो जाता है। जैसे कई मंदिरों में जाते हैं, जैसे बांके बिहारी है, वहां दर्शन थोड़ी देर के लिए खुला है तो फिर से बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं फिर तुरंत बंद कर देते हैं, क्योंकि पुजारी तो घबराते हैं कि इतने भक्ति भक्त लोग आते हैं, भक्ति भाव से आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान भक्तों के प्रेम के प्रभाव से यहां उतर के उनके साथ चले जाए, ये भाव है। और ऐसे हुआ भी था गौरीदास पंडित के साथ। गौरीदास पंडित की यहां अंबिका कालना में चैतन्य महाप्रभु आए थे संन्यास लेने के पहले नित्यानंद प्रभु के साथ, तो कई दिन रहे, और फिर जब जाने का समय हुआ तो गौरीदास पंडित ने कहा कि आप यहां से नहीं जाइए, आप यहीं रहिए। महाप्रभु ने कहा मुझे तो जाना है, सब जगह जाना है, सब जगह प्रचार करना है, एक जगह कैसे रह सकता हूं। तो जब गौरीदास पंडित बहुत प्रार्थना कर रहे थे तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, फिर मैं अपने आप को मूर्ति रूप में प्रकट करा देता हूं। उन्होंने इशारा किया कि ये नीम का वृक्ष है, इसमें मैं और नित्यानंद प्रभु दोनों हैं। तो फिर इस नीम वृक्ष के लकड़ी से दारू से गौर निताई की मूर्तियां बन गई, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब देखो हम ये दो विग्रह में हैं, और विग्रह में मुझ में कोई अंतर नहीं है, तो ये विग्रह तुम्हारे साथ रहेंगे, तो कोई कठिनाई नहीं होगी तुम्हारे साथ। गौरीदास पंडित बड़े बुद्धिमान थे, भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, आपने कहा कि मूर्ति में और आप में कोई अंतर नहीं, हाँ सही है, तो मूर्ति को धन दीजिए आप सही हो। अच्छा, तो भगवान का ठीक है। फिर क्या हुआ, मूर्तियां उतर गई और मूर्तियां चलने लगी है, तो गौरीदास पंडित देखने लग गए, और फिर यहां जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तो वो मूर्ति बन गए, और ये मूर्तियां उतर के ऑल्टर से उतर के चलते चल पड़े। तो अरे नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आप रुको, आप जाओ। तो फिर आए, अच्छा ठीक है, तो वो मूर्ति बन गए, तो ये जो पहले मूर्ति थी वो चलने लग गए, अरे नहीं नहीं आप रुको आप जाओ। ऐसा करते करते फिर अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु चले गए तो मूर्तियां तो नहीं रहा। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि बहुत कीर्तन हो रहा था, गौरीदास पंडित के शिष्य थे जिनका नाम था हृदय चैतन्य, उनका नाम था चैतन्य दास। गंगा के तट पे सब कीर्तन हो रहा था और गौर निकाय सिंहासन पर थे, उन्होंने देखा अरे हम कहां यहां सिंहासन पर बैठे, कीर्तन वहां हो रहा है और हम लोग यहां पे सिंहासन पर बैठे हैं। तो उन्होंने उनको उनसे रहा नहीं गया, सीधे उन्होंने छलांग मारी सिंहासन से और जा गए वहां भक्तों के बीच में कीर्तन में। बेचारे गौरीदास पंडित वहां सेवा के लिए कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तो उनके पीछे छड़ी लेकर गए, अरे बिल्कुल नहीं जाना, पीछे आना, पीछे वापस आना। तो दौड़ने का डर के मारे भागे भागे गौरीदास पंडित उनके पीछे और उन्होंने देखा कहां छुटे कहां छुटे, अभी मेरे भक्त हमारे भक्त आ रहे हैं। तो फिर सीधे वो गौरीदास पंडित के शिष्य चैतन्य दास के हृदय में प्रविष्ट हो गए और कुहर हो गए। तो गौरीदास पंडित चकाचौंध हो गए, अरे ये क्या हो गया। फिर उन्होंने अपने शिष्य चैतन्य दास का अभिनंदन किया और कहा कि अहो भाग्य है तुम्हारा, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि तुम जैसे शिष्य मुझे मिला है और देखो भगवान स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गए, प्रवेश हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य का नाम चैतन्य दास से बदल के हृदय चैतन्य दास रखा। और ये हृदय चैतन्य दास आगे चल के वो गुरु बने दुखी कृष्णदास का, दुखी कृष्णदास आगे बने श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद पंडित का। तो उस घटना के बाद अंबिका कालना में मंदिर में भी भगवान के दर्शन बहुत कम क्षणों के लिए खुलता है, एक समय थोड़े क्षणों के लिए, फिर से पुजारी बंद कर देता है कि क्योंकि कहीं भगवान उतर के फिर से चले जाए। खास करके जब भक्त आते हैं तो पुजारी बहुत सावधान रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ रहना चाहते हैं और भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने के लिए सभी भक्त आतुर रहते हैं। तो हालांकि परिक्रमा से इतना कुछ कहा गया है और हमें करना भी चाहिए, परंतु जब भगवान का सुंदर रूप हमारे सामने है तो अवश्य इस दर्शन का लाभ में लेना चाहिए। कभी कभी हम जाते हैं मंदिरों में, फोटो आदि लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि आंखों से फोटो लेके यह हृदय में उसको रखना, हृदय से फोटो लेना चाहिए और भगवान के सुंदर रूप का स्मरण हमें करते रहना चाहिए। फिर आप भी कह पाएंगे हम जीत गए, जीत गए। तो कह प्रदक्षिणा परिक्रमा ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, दर्शन के साथ साथ दर्शन भी प्रदक्षिणा भी, दोनों पाद सेवनम कहलाते हैं। तो चातुर्मास में ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। कार्तिक के अंत होने से ये चातुर्मास का अंत भी हो जाएगा। और आदि ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है कि जो गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना होगा। ऐसे भक्ति रत्नाकर में भी कहते हैं कि जो हरिदेव मंदिर में जाकर पहले मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव का दर्शन लेके परिक्रमा करता है गोवर्धन का, वो यहाँ इस दुनिया में रहते हुए भी भगवान के धाम में रहता है। तो देखिए गोवर्धन की परिक्रमा के लिए बहुत ऐसे शास्त्रों में गुणगान किया हुआ है उसके लाभ का। मथुरा महात्म्य श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा करने का सही तरीका है कि पहले हम मानसी गंगा में जाएं। मानसी गंगा मतलब वो गंगा जो भगवान के मन से उत्पन्न हुई थी और वहां स्नान करके वहां जो हरिदेव हैं उनका दर्शन करके फिर हमें गोवर्धन परिक्रमा करना चाहिए और उसी स्थान में लौट के वापस आना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए परिक्रमा। और किसी कारणवश अगर परिक्रमा अधूरा रह भी जाए तो किसी अगले दिन या दो दिन बाद, चार दिन बाद उसे पूर्ण करना चाहिए। थोड़े ही दिन पहले एक हमारी संस्था के सन्यासी आए थे वृंदावन में, तो कह रहे थे कि मैं अभी गोवर्धन जा रहा हूँ, मेरी आधी परिक्रमा बाकी है। क्या बात है, पहले मैं एक दिन गया था लेकिन मैं बीमार पड़ गया तो पूर्ण नहीं कर पाया। तो उस दिन के बाद कई हफ्ते कई महीने भी बीत चुके होंगे, लेकिन अभी वो पूर्ण कर रहे हैं, जहां से उन्होंने आधा छोड़ा था उस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं। तो ऐसे विधियां होती हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। ब्रज भक्ति विलास में भी ऐसे कई विधियों का वर्णन है कि जैसे हमें स्नान करके और हमारे दांतों को साफ करके जाना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाना चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं होने चाहिए, और जिन वस्त्रों में हम रात में सोए हैं उन वस्त्रों में हमने परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, और रात में नहीं करना चाहिए। हालांकि कई लोग, लाखों लोग करते हैं परिक्रमा, रात को भी करते हैं, विशेष करके पूर्णिमा के दिन। लेकिन फिर भी एक नियम है और ये भी बताया जाता है कि ज्यादा तेजी से चलना नहीं चाहिए। वैसे कोई चल नहीं सकता तेजी, थोड़े लोग चल सकते हैं, इतने थक जाते हैं लोग इतने तेजी से चलते नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि ज्यादा तेजी से नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेजी में गड़बड़ गड़बड़ में जाते जाते कहीं हमारे पैरों के नीचे कोई जंतु बन न जाए, इसलिए बड़े सावधानी से जाना चाहिए। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि हर एक प्राणी का, चाहे वो पेड़ हो, लता हो, कोई पक्षी हो, बंदर हो, कोई आदमी हो, एक पत्थर हो या कोई धूल हो, सबका सम्मान करके जाना चाहिए, किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, और विशेष करके वैष्णव को अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन गोवर्धन परिक्रमा में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए जहां तक हो सके, कोई चमड़े का पदार्थ नहीं पहनना चाहिए, जैसे बेल्ट होता है, कोई जूते होते हैं, ऐसे प्रकार की चीजें वो नहीं पहननी चाहिए। तो बड़े भक्ति भाव से हमें जाना चाहिए, गोवर्धन का दर्शन भक्ति भाव से हमें करना चाहिए। और ये जो परिक्रमा है इसमें हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं। जैसे परिक्रमा करते करते हम आंखों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गोवर्धन का रूप का दर्शन करके। कानों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम भक्तों के संग में जा रहे हैं तो नाम संकीर्तन करते करते जा सकते हैं, तो भगवान का नाम सुन सकते हैं। और वहां से जो तुलसी है या फूल है या जो पवन बह के गोवर्धन का गंध सुगंध ले आती है, तो अपने नसिकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ साथ में अपने जिह्वा से हम हरि नाम का उच्चारण करते करते जा सकते हैं। जब ये पवन हमारे शरीर का स्पर्श करता है तो इससे हमारी स्पर्श इंद्रियां भी युक्त हो जाती हैं भगवान की सेवा में। हमारे हाथों से हम तुलसी फूल आदि गोवर्धन को अर्पण कर सकते हैं। हमारे पैरों से हम चल के, हम परिक्रमा करके गोवर्धन की सेवा कर सकते हैं। हमारे मन से हम गोवर्धन की महिमा का, यहाँ जो सुंदर लीलाएं हुई थी उनका स्मरण करके हम मानसिक सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक इंद्रिय गोवर्धन की सेवा में हम लगा सकते हैं। ऐसे गोवर्धन की सेवा होनी चाहिए, ऐसे बताया गया है। और अगर हम जगह जगह पर रुक के हम वहां उस स्थान का महात्म्य सुने, वहां की लीलाएं हुई थी वो सुने, तो काफी समय लग जाता है। वैसे गोवर्धन की परिक्रमा देखिए तो 25 किलोमीटर करीब करीब है, और एक लंबी परिक्रमा भी है जो कि 40 किलोमीटर की है। और 25 किलोमीटर वाली परिक्रमा जो है, अगर तेजी से आदमी जाए तो 6 घंटे में कर लेता है, लेकिन अगर कोई वृद्ध है या इतनी तेजी से नहीं चल सकते तो अभी अधिक समय लगता है। और अगर जगह जगह पर रुक के हम कुछ कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो और भी समय लग जाता है, कभी कभी अनेक दिन लग जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो महीनों लगाते हैं एक परिक्रमा के लिए। क्यों? क्योंकि वो दंडवत परिक्रमा करते हैं। दंडवत कैसे करते हैं? एक जगह खड़े हो जाते हैं, दंडवत करते हैं, फिर जहां उनकी उनकी उंगली थी उस स्थान में खड़े हो जाते हैं, फिर दंडवत करते हैं, फिर आगे जाते हैं। इस प्रकार से दंडवत करते करते सारे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। कई लोग 108 दंडवत परिक्रमा करते हैं, एक ही स्थान में 108 बार दंडवत करना, फिर आगे चल के उधर 108 बार दंडवत करना, इससे साल भर निकल जाता है। हाँ, हमारे संप्रदाय में इस प्रकार के परिक्रमा के लिए इतना महत्व नहीं दिया है, लेकिन परिक्रमा अवश्य करना चाहिए पैदल चल के। कई बार भक्त पूछते हैं कि पैदल परिक्रमा नहीं कर सकते तो क्या गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं? ठीक है, कर तो लीजिए, कम से कम गोवर्धन का दर्शन होगा, या किसी वजह से वृद्ध अवस्था से या बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, कर लीजिए, लेकिन भक्ति भाव से कीजिए। परंतु अगर हो सके तो पैदल करना ये बहुत आवश्यक है। जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम बड़े बड़े आचार्यों के पद चिन्हों में चल रहे हैं। आचार्य क्या? स्वयं भगवान के पद चिन्ह में, क्योंकि भगवान ने ही तो उद्घाटन किया था गोवर्धन परिक्रमा का, ब्रजवासी वो भी कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु ब्रजधाम ब्रजभोग में आए, उन्होंने मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव का दर्शन करके परिक्रमा शुरू कर ली। फिर शर गोस्वामी ने परिक्रमा की। जब सनातन गोस्वामी चक्रेश्वर महादेव में मानसी गंगा के तट में रहा करते थे तो वो रोज परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, और वो लंबी परिक्रमा करते थे 40 किलोमीटर वाली। और इस समय जबकि सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए थे तो वो काफी वृद्ध हो गए थे और उनको काफी कष्ट होता था, शारीरिक कष्ट होता था, क्योंकि वृद्ध अवस्था में उनको परिक्रमा करनी है सारे गोवर्धन की, वो भी लंबी परिक्रमा। एक दिन हुआ ये कि जब सनातन गोस्वामी कर रहे थे परिक्रमा, एक सुंदर बालक उनके पास आया और बालक कहने लगा कि अरे बाबा जी, आप इतनी परिक्रमा क्यों करते हैं? आप तो बूढ़े हो गए, आप इतना भजन करते हैं, भजन का फल तो आपको मिल गया, अभी और क्यों परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ? अभी आप बंद कर दीजिए, अभी आप तो वृद्ध हो गए हैं, अभी एक स्थान में बैठिए, आपका जप कीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं, मैंने तो व्रत लिया है और मेरा व्रत है कि मुझे रोज गोवर्धन की परिक्रमा करनी ही चाहिए। इसका मतलब है कि जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतने ही हमारी दृढ़ता बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि अभी हम इतने साल भक्ति में हो गए तो इसलिए हम अभी छूट है हमारे लिए, अब ये नहीं करेंगे तो चलेगा, वो नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे व्रत का पालन करना ही चाहिए। फिर वो ग्वाल बाल गया और वहां से गोवर्धन शिला गया, कहा ये पत्थर है गोवर्धन और ये भी गोवर्धन से अभिन्न है, तो इस शिला को आप लीजिए और इसकी प्रदक्षिणा कीजिए चार बार। जब इसकी प्रदक्षिणा करेंगे तो गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के बराबर हो जाएगा। फिर सनातन गोस्वामी ने उस गोवर्धन शिला को स्वीकार किया और फिर क्योंकि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, फिर रात में उनको पता चला कि अरे ये बालक तो कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो स्वयं श्री कृष्ण थे जो कि ग्वाल बाल के रूप में आके उनसे ऐसा गोवर्धन शिला लेकर चले गए। उसके बाद सनातन गोस्वामी उस गोवर्धन शिला की प्रदक्षिणा करते थे। कई लोग ऐसे भी कहते हैं ब्रज में कि कृष्ण जब ऐसे बालक के रूप में आए सनातन गोस्वामी के पास तो उन्होंने उनके चरण कमलों के चिन्ह और बांसुरी के चिन्ह भी उस गोवर्धन शिला पे लगाए। और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में कहते हैं कि वो शिला अभी तक है, और कोई लोग कहते हैं कि असली शिला जयपुर के राधा दामोदर मंदिर में है। खैर जो भी हो, यहाँ हो या बाहर हो, लेकिन वो शिला का दर्शन कर सकते हैं। भले ही यहाँ कोई भी गोवर्धन शिला ही है तो दर्शन अवश्य कर सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने भी ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा की थी।
तो गोवर्धन वैसे एक मोर के आकार में है। इस मोर ने अपने मुख को अपने पेट में ऐसे घुमा लिया है, ऐसे मोर कभी कभी करते हैं। और इस मोर की आंखें हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। राधा कुंड श्याम कुंड ये कुंड है, इसमें जल है। इसका मतलब है कि गोवर्धन रूपी जो मयूर है उसके आंखें हैं हमेशा कृष्ण प्रेम में, राधा कृष्ण के प्रेम में गीले रहते हैं, इसलिए कुंड है। और वो अपने इस प्रकार से मुंह करके हुई है। और जो गर्दन है वो है दान घाटी। आप वैसे जो गोवर्धन परिक्रमा कर चुके हैं आप तो जानते हैं दान घाटी वो स्थान है जहाँ आप गोवर्धन शहर के पास में आते हैं। और फिर ये मयूर की पूंछ है पूंछड़ी, पूंछड़ी का लोटा भावा वो स्थान जहाँ है। और फिर हम घूमते हैं वहां से गोवर्धन से। तो गोवर्धन परिक्रमा ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों के लिए। और इससे हम देखते हैं कि भगवान के चरण कमलों की बहुत तीव्रता से सेवा होती है, निकट की सेवा होती है। गोवर्धन राधा कृष्ण के ही रूप हैं, स्वयं कृष्ण भगवान हैं और कृष्ण के दास भी हैं। और आगे चल के हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आगे श्री कृष्ण ने उनसे जब प्रदक्षिणा करने की बात कही थी तो ब्रजवासियों ने ऐसे ही किया, अपने गौओं को सामने रखा। और फिर जो गोपियां हैं वो बैलगाड़ी में बैठी, जो गोपगण हैं वो पैदल चले। अनांसी अनदुत युक्तानि ते चारुहीय सु अलंकृताः। फिर अनदुत युक्तानि मतलब जो बैलों को बैलगाड़ी में, तो बैलों को लगाया। और फिर ते च आरुहीय फिर चढ़े सारे गोपियां उन बैलगाड़ियों में सु अलंकृताः, अलंकृत थी तरह तरह के आभूषण से। गोप्यश्च कृष्ण वीर्याणि गायन्तः सद्विजाशिषः। फिर गोपियां क्या कर रही थी परिक्रमा करते करते, परिक्रमा करते करते वो श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। कृष्ण वीर्याणि गायन्तः, एक कृष्ण के वीर का गायन कर रही थी। कृष्ण ने ऐसे किया, कृष्ण ने वैसे किया, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण का गुणगान निरंतर गोपियां करती रहती थी। तो यहां पर भी गोपियां सब अपने अपने बैलगाड़ियों में बैठ गए, जिनके छोटे बच्चे थे बच्चों को बिठा लिया। और माहौल की कल्पना कर सकते हैं आप। और ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो द्विज आशीषः, वो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सबके लिए। बहुत मंगलमय वातावरण, ब्राह्मण अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, गोप गोपियां कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, बहुत रमणीय सुंदर वातावरण, भक्तिमय वातावरण। सब लोग बड़े हर्षित अवस्था में थे, मुदित थे। और ऐसे अवस्था में सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा कर लिए। श्री गोवर्धन परिक्रमा की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। तो आगे चल के जब प्रदक्षिणा कर ली ब्रजवासियों ने तो फिर क्या हुआ, अगर उसको भी अगर आपको जानना है तो कल शाम को आप यहाँ पर आइए। तो कोई प्रश्न है आपके पास? जी, प्रश्न ये है कि चार बार प्रदक्षिणा क्यों, क्योंकि ऐसे विधि है परिक्रम। जब तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा हर रोज हम लोग करते हैं, यहाँ मंदिरों में हम लोग सुबह शाम तुलसी पूजा करते हैं, तो चार बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, ऐसे विधि है ये। तो तीन नहीं चार ये बताया जाता है। हाँ माइक दीजिए।
एक प्रश्न था और एक रिक्वेस्ट था। प्रश्न ये है आपने बोले कि चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि अद्वैत आचार्य को मैं जीत गया, मैं जीत गया, लेकिन ऐसे देखो तो अद्वैत आचार्य भी जीत गए ना, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी परिक्रमा करी थी। चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान जी है ना?
हाँ, परिक्रमा तो लाभ तो हुआ उनको, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये बस कहना चाह रहे थे कि ठीक है, परिक्रमा करने ये सब करना बहुत जरूरी है, हमें करना भी चाहिए, लेकिन मैंने तो साक्षात भगवान को देखा और मैं देखते रहा और तुम परिक्रमा करते रहे। ये बात
रिक्वेस्ट है, जैसे आपने बोला कि गोवर्धन की चार दिन में चर्चा करेंगे और गोवर्धन अष्टक भी हम सुनने को
जी हम करेंगे। निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम, वो भी करेंगे और प्रयास करेंगे कि रूप गोस्वामी पाद विरचित प्रथम गोवर्धनाष्टकम वो भी गाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ठीक है, देखेंगे करेंगे। और कोई प्रश्न? शिवाय के साथ साथ महामंत्र का जप भी कर सकते हैं क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का जप हर अवस्था में आप कर सकते हैं, लेकिन शिव जी भी इस महामंत्र का जप करते हैं। राम रामेति रामेति रमे रमे रामे मनोरमे सहस्र नामा विस्तुल्य राम नाम रामे, ऐसे पुराणों में कहा गया है। राम 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 इति, राम 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 इति, रमे रामे मनोरमे, ऐसे शिव जी रमण करते हैं राम के नाम में, राम के नाम का आनंद लेते हैं। मैं आनंद लेता हूं, ये भगवान शिव जी अपनी पत्नी से कहते हैं, कहते हैं। तो शिव जी भी अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण या संकर्षण के रूप में होते हैं, उनके नामोच्चार करते हैं। तो अगर हम शिव जी को बहुत मानते हैं तो शिव जी के जो बहुत प्रिय हैं उनके नामों का उच्चारण हमें करना चाहिए। हमें तो गोवर्धन परिक्रमा, ये अगला प्रश्न है, हमने गोवर्धन परिक्रमा तो कर ली है लेकिन हमारे अनर्थ अभी तक हैं। तो हम भगवान के धाम में कैसे जा सकते हैं? भक्ति के अंगों का पालन किसी प्रकार से और विचार करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक बार करके हम वापस चले जाएंगे, लेकिन वापस चले जाने की तैयारी हो रही है, भगवान के धाम में लौट के जाने के लिए द्वार खुल गए हैं। अभी आगे रास्ते में जाना ये हमारा काम है, बस इस भक्ति पथ को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी हो, कुछ भी हो, तरह तरह के आपत्तियां आएंगी, तरह तरह के कारण माया देवी भेजेंगी हमारे जीवन में भक्ति से हमें हटाने के लिए, लेकिन हमें बस छोड़ना नहीं चाहिए। बस ऐसे हम भक्ति करते रहेंगे, भक्तों के बीच में आकर अंततः सफलता प्राप्त होगी ही। भक्त समय या काल के परे होते हैं, कृपया इसको समझाइए। भक्त विनोद ठाकुर ने कहा है कि जो कहता है कि वैष्णव मर जाते हैं वो गलत कहता है, इस बात को समझाइए। वैष्णव काल के परे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णव बूढ़े नहीं होते, कि वैष्णव को बीमारी नहीं होती, वैष्णव के बाल सफेद नहीं हो जाते, ये मतलब नहीं है। वैष्णव के शरीर की बात नहीं हो रही है, वैष्णव के आत्मा और चेतना की बात हो रही है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे लिए काल का महत्व नहीं रहता,
क्योंकि यहाँ पर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाकर ही भगवान की सेवा ही करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। नारायण पढ़ा सर्वे न कुतश्चन विभ्रति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यात् दर्शिनः। भगवान के भक्तों के लिए स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो, मुक्ति की अवस्था हो या भगवान का धाम हो, पृथ्वी लोक हो, एक ही है, अपनी तुल्यात् दर्शिनः समान है। क्यों? क्योंकि हर अवस्था में भगवान के भक्त वही कार्य करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, इसलिए भक्तों के लिए ये काल का फर्क नहीं पड़ता। ये काम तो नहीं करना है, और जब मृत्यु आ जाएगी तो अभक्तों के लिए मृत्यु अपने उनके घमंड के, उनके योजनाओं को चूर करने का, नष्ट करने का एक यंत्र है। परंतु भगवान के भक्तों के लिए मृत्यु ये वैकुंठ द्वार, वैकुंठ जगत के लिए एक द्वार है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वैष्णव जो होते हैं वो काल के परे हो गए। इसलिए वैष्णव जब इस शरीर को त्यागता है तो वो हमेशा जीता है, उसकी वैष्णवता का नाश कभी नहीं होता है, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति, उसका आध्यात्मिक प्रभाव हमेशा रहता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि वैष्णव की मृत्यु हो गई, हम कहते हैं वैष्णव का तिरुभाव हो गया। गोवर्धन पर्वत से कोई पत्थर या शिला क्यों नहीं लेना चाहिए? ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि जब तक कोई गुरु हमें नहीं देते हैं, और विशेष करके कोई ब्रजवासी हमें गोवर्धन शिला नहीं देते हैं, तो हमें गोवर्धन शिला नहीं लेना चाहिए। यूं ही जाकर गोवर्धन से कोई शिला उठा लिए और लेकर आए वो ठीक रहेंगे, ये शास्त्रों की विधि है। क्योंकि हर एक आदमी ऐसे करते जाएगा और बहुत सहज ही सस्ता ले लेगा गोवर्धन शिला को, फिर लोग इसका व्यापार बनाएंगे, कोई उठा के फिर बेचना शुरू कर देगा, फिर क्या क्या नहीं होगा, फिर अपराध हो जाएगा गोवर्धन के प्रति। इसलिए कहा जाता है कि केवल गुरु से स्वीकार करना चाहिए और ब्रजवासियों से, तब हम गोवर्धन शिला की उपासना कर सकते हैं। हरे
कृष्ण। तो जिस प्रश्न है उस पर कुछ अगर कोई अपराध का हो, प्रश्न की चर्चा बाहर भी होती है कि जो देवी, जो देवता है वो भगवान के भक्त हैं और भगवान के अधीन होते हैं, और इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। देखा गया कि इन्होंने काफी अपराध किए अहिल्या के, गोवर्धन या बृहस्पति के प्रति अपराध, और भी कई अन्य अपराध, तो इन सब अपराधों को कैसे लेना चाहिए? वो देवताओं के राजा भी हैं।
हाँ, ये तो सारे गोवर्धन लीला का उद्देश्य है, और आगे चलते भी हम चर्चा करने वाले हैं इस विषय में कि ऊंचे पद को प्राप्त करने से बहुत खतरा होता है, घमंड होने की संभावना होती है, और जब घमंड होता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है हर अवस्था में। इसलिए हालांकि हमारे दृष्टि से इंद्रदेव तो बिल्कुल सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन फिर भी ऐसे महान व्यक्तियों में भी ऐसे त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं, और ऐसे लीलाओं से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को सही रास्ते पर ले आना चाहते हैं। हमें ऐसे निंदा के दृष्टि से, निंदात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इंद्रदेव को, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। परंतु तत्व जो यहाँ से हम सीख सकते हैं, जो एक सबक सीख सकते हैं, वो हमें लेना चाहिए। वो क्या है कि कोई कितना भी बड़ा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो इस जगत में, जब तक वो भगवान के पूरी तरह से शुद्ध कशुद्ध भक्त नहीं होता है, तब तक वो इस घमंड से मुक्त नहीं होता। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, नम्रता का अनुशीलन करना चाहिए, ताकि हम पद प्राप्त करें या न करें, लेकिन सदैव ये याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के दासों का दास हूँ, फिर हम सुरक्षित रहेंगे। तो इंद्रदेव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सबको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये भी एक कारण है। अगर किसी साधारण व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ होता तो हम लोग इतने कोई महत्व नहीं देते उसको, लेकिन घमंड किसको आया? इंद्रदेव को आया, तब हम सब लोग सुनने बैठ जाते हैं। अच्छा, इंद्रदेव को आया तो हमारे साथ ही हो सकता है। अगर किसी साधारण आदमी को आया होता तो हम ध्यान नहीं देते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब सारी दुनिया को कोई सिखाना चाहते हैं, कोई उपदेश देना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को निमित्त बनाते हैं, जैसे प्रहलाद और पांडवों को इतना कष्ट हुआ जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने इतनी भक्ति की तो भगवान ने उनको ही क्यों कष्ट दिया, दुर्योधन को क्यों नहीं दिया? ऐसे दुर्योधन को भी तो मिला और बाद में तो बहुत ज्यादा मिला, लेकिन भगवान सिखाना चाहते हैं उनके महान भक्तों के माध्यम से कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो हमें कैसे भक्ति को त्यागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें भक्ति और भी तीव्र बनानी चाहिए। अगर किसी साधारण भक्त के साथ ऐसा हुआ होता हम ध्यान नहीं देते, लेकिन भगवान ने अपने सबसे अच्छे भक्तों को चुना, पांडवों को चुना, प्रहलाद महाराज को चुना, ब्रजवासियों को चुना, उनको कठिन परिस्थितियों में डाल दिया हम सबको सबक सिखाने के लिए, हम सबको उपदेश देने के लिए। तो कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि भगवान इंद्रदेव जैसे महान व्यक्तियों को, ऊंचे पद में रहने वाले भक्तों को भी कभी ऐसे उनके माध्यम से हम सबको सिखाना चाहते हैं। तो ये हमें संदेश इससे लेना चाहिए। और कोई प्रश्न? यहाँ एक प्रश्न है कि कृष्ण भगवान ने ब्रज भाषा बोली या संस्कृत? अब देखिए, हम तो थे नहीं उस समय, लेकिन हमें इतना तो पता है कि सुखदेव गोस्वामी ने संस्कृत में लिखी है। अब हो सकता है ब्रज भाषा में हो या संस्कृत में हो, जो भी हो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण भगवान ने क्या कहा ये बताया है यहाँ पर। ये बताया गया कि गोवर्धन परिक्रमा या पूजा कृष्ण के निकट की आराधना होती है, तो सेवा ये क्या निकट या दूर की हो सकती है? ये हृदय की बात है। गोवर्धन से दूर रहते हुए भी हम गोवर्धन के बहुत निकट हो सकते हैं, और सिंहासन पर बैठते हुए भी हम भगवान से बहुत दूर हो सकते हैं। अगर हमारी चेतना कहीं और है तो हम भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, परंतु हम किसी दूसरी बात की विचार हमारे मन में है। तो निकट या दूर किसी बात, ये हमारी चेतना पर निर्भर है। परंतु जब हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो हम साक्षात भगवान की उपस्थिति में होते हैं। जैसे हमने कहा, हमारी सारी इंद्रियां पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकती हैं, और ये निकट इसलिए कहलाता है क्योंकि भगवान की जो गुह्य लीलाएं हैं वो सब इन स्थानों में हुए थे। भगवान ने जिस स्थान में इंद्रदेव का मानभंग किया, जहां उन्होंने उनको उपदेश दिया, जहां पे अनेक लीलाएं हुई, वो सब गोवर्धन के आसपास है, इसलिए निकट सेवा कहलाती है। ये प्रश्न है कि क्या राधा कुंड की परिक्रमा भी रात को की जा सकती है? वैसे नियम तो है कि रात को नहीं करना चाहिए, परंतु लाखों लोग रात को भी कर लेते हैं, खास करके गर्मी के समय में दिन के समय तो करना संभव ही नहीं है, इसलिए लाखों लोग रात को करते हैं। ये प्रथा बन गई है पूर्णिमा के रात में। और जब आप गुरु पूर्णिमा के दिन जाएंगे, जो कि सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, आप परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। लाखों लोग कर रहे होते हैं, चलने की भी जगह नहीं होता। वैसे गुरु पूर्णिमा जो है ये व्यासदेव की तिथि है, व्यासदेव को सम्मान दिया जाता है, परंतु इस दिवस पर, इस तिथि पर सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ। तो सनातन गोस्वामी ब्रज में 40 से अधिक वर्ष रहे और इस समय वो ब्रजवासियों के लिए इतने प्रिय बन गए कि जब उनका तिरुभाव हुआ तो ब्रजवासियों को बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ। और आज भी लोग उस दिन से वास्तव में जब सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ, सारे ब्रजवासियों ने सर मुंडवा लिया और सर मुंडवाकर सबने गोवर्धन परिक्रमा किया। इसलिए आज भी इसे मुंडिया परिक्रमा कहते हैं, गोवर्धन। सब अपना सर मुंडवाते हैं ब्रजवासी और परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी के स्मरण में। लेकिन आजकल अनेक लोग भूल चुके हैं कि सनातन गोस्वामी कौन थे, बस करते हैं इसलिए वो भी परिक्रमा करते हैं। लेकिन राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, इधर उधर से, गाँव से, शहरों से लाखों लोग आते, दिन में रात में जगह भर जाता है। लोग करते तो हैं, परंतु नियम ऐसे हैं, नियम तो ऐसे और भी कई हैं, लेकिन मुख्य चीज ये है कि हमें भक्ति भाव से करना चाहिए। भगवान माया देवी को क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो हमको वापस जल्दी उनके पास ले आना चाहते हैं। और माया देवी के त्रिशूल से मार खा खा के कभी एक न एक दिन हमारी होश ठिकाने आ जाएगी कि चलो अभी माया के बहुत खेल देख लिए, अभी वापस भगवान के पास जाना है। तो भगवान माया देवी को भेजते हैं हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए। मत परायण होकर कर्म करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी हम निहित कार्य करते हैं वो भक्ति भाव से करने चाहिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, तो कर्म का महत्व क्या है? कर्म का महत्व ये है कि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है इच्छा करने के लिए, उस इच्छा का प्रयोग हमें करना चाहिए ऐसे कर्मों के लिए जिनसे कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो। यज्ञार्था कर्मणों यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग्रह समाचार। तो ये यज्ञ कहलाता है। तो ऐसे कर्म केवल हमें करने चाहिए। ठीक है, आखिरी प्रश्न। प्रश्न ये है कि ऐसे कहा जाता है कि गोवर कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, तो उसी प्रकार से गोवर्धन लीला भी भगवान की इच्छा से हुई। तो फिर आगे प्रश्न क्या है? भगवान की इच्छा से हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इंद्रदेव की भूमिका नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रदेव को इंद्रदेव की गलती नहीं थी, ऐसा नहीं है। या तो फिर कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन की गलती नहीं थी, ऐसा नहीं है। कृष्ण की इच्छा से हुआ, लेकिन क्यों हुआ? गोवर्धन लीला हुई कृष्ण की इच्छा से, लेकिन क्यों हुई? क्योंकि इंद्र का मान बहुत बढ़ गया था और भगवान कृष्ण मान भंग करना चाहते थे इंद्रदेव का। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि सारे दुष्टों का विनाश एक स्थान पे करना चाहते थे। अगर युद्ध नहीं होता तो कृष्ण को जगह जगह जाकर दुनिया के कोने कोने में जाकर असुरों को नाश करना पड़ता। अब क्या हुआ, एक स्थान में सबको बुला लिया और खत्म कर दिया। तो भगवान की इच्छा भी होती है, साथ साथ अन्यों के भाग्य भी इससे जुड़े हुए रहते हैं। और भगवान की इच्छा जो भी हो, चाहे किसी की हत्या करते हैं और चाहे किसी को बचाते हैं, वो भगवान की कृपा ही होती है। भगवान जो भी किसी व्यक्ति के साथ करते हैं उससे उस व्यक्ति की भलाई ही होती है। इसलिए भगवान अपनी इच्छा के द्वारा सबकी भलाई करते हैं। गोवर्धन लीला में भगवान ने न केवल गोवर्धन ब्रजवासियों की भलाई की, इंद्रदेव की भलाई भी की। इंद्रदेव को बहुत बड़े धोखे से, बहुत बड़े खतरे से बचाया, घमंड के खतरे से। तो कृष्ण भगवान की इच्छा थी, साथ साथ अन्यों की भी इच्छा थी, इसलिए लीला हो गई। ठीक है, अभी सूचनाएं और फिर उसके बाद आरती और फिर प्रचार।
एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं जो आप इतनी संख्या में यहाँ आए। जैसे अभी